विल प्रे
प्रार्थना करेंगे.
थैंक यू फादर फॉर दिस टाइम लॉर्ड.
स्वर्गीय पिता इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं.
प्रे दैट योर होली स्पिरिट विल मूव अराउंड इन आवर मिडस्ट ओ लॉर्ड जीसस.
प्रभु हम प्रार्थना करते कि आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में प्रभु मंडराता रहे.
लॉर्ड व्हाटएवर वी स्पीक लेट इट नॉट बी जस्ट वर्ड्स मेयर वर्ड्स ओ लॉर्ड.
प्रभु जो भी हम यहां पर बोले प्रभु केवल वो शब्द न रहे.
Let the words have power, O Lord Jesus.
लेकिन उन शब्दों के अंदर आपका सामर्थ उतरे.
Let there be life in our midst, O Lord.
आपका जीवन हमारे मध्य में आए.
We cannot do anything with our own, O Lord Jesus, own strength.
प्रभु हम अपने खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं.
We are nothing without you, Lord.
प्रभु हम आपके बिना कुछ भी नहीं है.
We can't speak anything without you, Lord Jesus.
प्रभु हम कुछ भी अपने आप से आपके बारे में नहीं बोल सकते हैं.
Pray that you will speak to our hearts.
प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमारे हृदय से बात करें आज.
एनकरेज अस लॉर्ड.
प्रभु हमें प्रोत्साहित करें.
लिफ्ट अस अप लॉर्ड जीसस.
प्रभु हमें उठाइए यीशु.
लेट अस सो लुक अनटू यू लॉर्ड जीसस.
प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं.
लेट योर नेम बी ग्लोरिफाइड इन एवरीथिंग वी डू.
प्रभु जो कुछ हम करते हैं प्रभु केवल आपका नाम महिमा पाए.
आमीन
आमीन.
गॉड वाज स्पीकिंग टू मी अबाउट वन थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट One of the most important things that God desires for us.
और परमेश्वर मुझसे पिछले दिनों में जो बात कर रहा था कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर हमारे जीवन के संबंधित इच्छा रखता है.
When God created man,
जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया,
He had one of the main purposes for man was that he should have fellowship with God.
और उस मनुष्य को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति रखे.
And that is why it says in 1 John 1.
इसलिए पहला योहन्ना पहले अध्याय में लिखा है.
Says from the first verse only it says what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, and what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life.
और उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ.
And the life was manifested, and we have seen and testified and proclaimed to you the eternal life.
और यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते और तुम्हें अनंत जीवन का समाचार देते हैं.
Which was with the Father and was manifested to us.
और जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ.
So this eternal life that was what was from the beginning. So God's desire from the beginning was that we should have eternal life.
और शुरुआत से ही परमेश्वर की ये इच्छा थी कि हमारे जीवन में वो अनंत काल का जीवन हो.
And then it says it was manifested to us. Jesus came and revealed that life to us.
और यीशु मसीह धरती पर आया और वो अनंत काल जो जीवन है वो हमारे ऊपर प्रकट किया.
And then it says in the third verse that we have fellow and it says so that you too may have fellowship with us, and indeed a fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ.
तीसरे वचन में लिखा है कि इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है.
So what was from the beginning? So God's first original purpose for man was that he should have life and fellowship.
और परमेश्वर का जो पहला जो उद्देश्य था मनुष्य के लिए कि वो परमेश्वर के साथ हम जीवन को रखे और उस संगति को उसके साथ बनाए रखे.
So When God created Adam,
जब परमेश्वर ने आदम को बनाया,
Adam and Eve,
आदम और हवा को,
he had told them not to eat of from the fruit of one tree.
और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि एक वृक्ष का फल उनको नहीं खाना है.
And that was the knowledge of good and evil, the tree of the knowledge of good and evil.
वो जो वृक्ष था, भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष था.
But the serpent deceived. Eve and she ate and Adam also ate.
लेकिन सांप ने हवा को धोखा देकर उसको वो फल खिलाया.
And when after that God came to them, God came the called out to them and told whether where are you?
और परमेश्वर उनको मिलने आता है और उनको बुलाता है कि आदम हवा आप कहाँ है?
So Adam didn't tell the truth that time.
और आदम ने उस समय सत्य नहीं कहा.
He told in a twisted way that he ate the fruit because Eve gave it to him.
और उसने वो आरोप को उसकी पत्नी पर डाल के कहा कि हवा जो आपने दी थी उसने मुझे दिया और मैंने खाया.
God wanted an honest reply from Adam and Eve both.
और परमेश्वर चाहता आदम हवा से एक ईमानदार जो उत्तर था उसको चाहता था.
So because they didn't obey, they didn't tell the truth, that's why God had to take a stand against them.
और उन्होंने सत्य वहां पे सत्य को साथ नहीं दिया, वो खड़े नहीं रहे सत्य के लिए. परमेश्वर ने उनके विरोध में एक स्टैंड लेना पड़ा.
God's desire was that he should फॉर इटर्निटी टू हैव फेलोशिप विद मैन विद एडम एंड ईव.
और परमेश्वर की यही इच्छा थी कि अनंत काल के समय तक आदम और हवा के साथ वो संगति बनाए रखे.
बिकॉज ऑफ सिन ही हैड टू कास्ट देम आउट ऑफ द गार्डन.
और उस पाप की वजह से उस बगीचे से उसको बाहर निकाल देना पड़ा.
एंड इट सेज दैट दैट्स व्हाई आफ्टर दैट वी डोंट हियर अबाउट एडम एंड ईव एनीथिंग लाइक दे what God spoke to them. We don't hear him, hear God at all.
और उस घटना के बाद हम कहीं पर भी पढ़ते नहीं है ना सुनते हैं कि ये परमेश्वर ने आदम और हवा से कहीं पर भी बात की.
So once sin comes in our lives and we don't acknowledge it and we confess it with to God, then we lose that fellowship with God immediately.
और उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई पाप आता है तुरंत हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने उस पाप को नहीं मानते तो वही हमारा हाल होता है जैसे आदम हवा का था.
We see in the life. After that we see about Cain and Abel.
और उसके बाद काइन और हाबेल के बारे में हम पढ़ते हैं.
We go to Genesis 4.
उत्पत्ति चौथा अध्याय.
It says here that God didn't have, God had regard for Abel and his offering.
और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया.
It says in the fourth verse.
चौथे वचन में.
And then it says the fifth verse, Cain, for Cain and his offering he had no regard.
लेकिन पांचवें वचन में लिखा है परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया.
And God knew what was going on in the heart of Cain.
परमेश्वर जानता था कि केन के हृदय में क्या चल रहा था.
And God didn't want him to sin.
और परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि काइन पाप करे.
The same way for us also, if we see our God speaks to us before we sin.
और इसी प्रकार जिससे पहले कि हम पाप करें परमेश्वर हमसे बात करता है.
So if we don't listen to him, then it's written there that if you, why are you angry? In the sixth verse it says, Lord said to Cain, why are you angry and why has your countenance fallen? If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door and its desire is for you, but you must master it.
और वचन 6 और 7, तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है.
This is the desire, original God's desire is for us that we should master sin. We should not fall into sin and then come back. That is the original purpose, but many times we don't listen to the voice of the Holy Spirit and voice of the conscience and we sin.
और कई परमेश्वर की जो आदि में जो योजना थी वो यही थी कि हम पाप के ऊपर प्रभुता करें, पाप हम पर नहीं, और हम प्रभु की आवाज को नहीं सुनते और हमारे विवेक को खोकर हम पाप करते हैं.
But after that he read that Cain rose up against Abel's brother and killed him.
और उसके बाद काइन खड़ा हुआ और अपने भाई हाबिल को उसने मार दिया.
So he ignored the voice of God that was speaking to him.
और जो परमेश्वर की आवाज ने काइन से बात की उसको उसने नजरअंदाज कर दिया.
And then after that it says that the Lord asked Cain, where is Abel your brother?
और फिर परमेश्वर ने केन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है?
After losing that good conscience, he has lost his botheration for his brother itself.
और वहां पर उसके विवेक को खो जाने के बाद जो अपने भाई के प्रति जो उसकी चिंता होनी चाहिए वो भी उसने खो दिया था.
He says, I do not know.
उसने कहा कि मैं नहीं जानता.
So Jesus, God said after that the voice of your brother's blood is crying to me from the ground.
और 10 वचन में परमेश्वर कहता है तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है.
So it's this passage says one thing that when I harm someone, God requires that I should clear that thing with that person.
और जब मैं किसी की हानि करता हूं तो परमेश्वर की इच्छा रखता है कि मैं उस चीज को पहले ठीक करूं.
So that's why it says, but when Jesus came,
लेकिन जब यीशु मसीह आया,
he came to give us forgiveness.
उसने परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें वो पापों की माफी दे.
That even if we have something against someone and we clear it, God's Jesus came down so that we will have that true forgiveness of in our lives.
और यहाँ तक कि हम किसी के विरोध में कुछ पाप करते हैं और वो हमें मान भी लेते हैं, लेकिन परमेश्वर सच यीशु मसीह इसलिए आया कि सच में वो परमेश्वर पिता का जो माफी वो हमारे हृदय में लाए.
We read about David.
हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं.
When Saul was pursuing him.
एक बार जब शॉल उसके पीछे पड़ा हुआ था.
1 Samuel 24:5.
और पहला सैमुएल 24 अध्याय और 5 वचन.
He had a very sensitive conscience that time.
और दाऊद के पास उस समय बहुत एक संवेदनशील एक विवेक था.
It says that when David cut off the edge of Saul's robe. He could have easily killed him.
और वहां पर दाऊद बड़ी आसानी से उसके जो कपड़े का भागे का छोर काट बड़ी आसानी से काटकर उसको मार सकता था शाउल को.
Just cutting off the robe, the edge of that Saul's robe made him bother. His conscience was bothered because of that.
और वहां पर वो शाउल के जो कपड़े थे उसके एक छोर काटने के लिए वो इतना उसका विवेक उसको परेशान कर रहा था.
सो ही केप्ट हिज कॉन्शियंस वेरी सेंसिटिव.
और दाऊद का जो विवेक था बहुत ही संवेदनशील था.
वी हैव टू वेज टू कीप आवर कॉन्शियंस. वी कैन जस्ट इग्नोर व्हाट द कॉन्शियंस इज टेलिंग अस एंड आफ्टर सम टाइम वी नो अबाउट डेविड आफ्टर सम टाइम दैट ही सिंड वेरी टेरिबली.
और कई बार हम हो सकता है कि पहले हमारा संवेदनशील हो सकता है विवेक, उसके बाद जो हमारा विवेक कहता है उसको हम निरंतर नजरअंदाज करते रह सकते. उसके बाद दाऊद के बारे में पढ़ते कि उसके आगे बढ़कर उसने बहुत ही भयंकर रीति से पाप किया.
एंड देन बट वन गुड थिंग अबाउट डेविड वॉज वेन इवन वेन ही सिंड ही इमीडिएटली वेन First, when he sinned, he didn't know only that he didn't even have a guilt of his own sin.
और पहले उसने जब पाप किया उसको पता भी नहीं चला कि उसके पाप का बोध या उसको उसका आभास भी नहीं हुआ.
Nathan had to come and tell him.
और नाथन नबी को उसके पास आकर उसको बताना पड़ा.
So this is also one thing that we can remember that if we don't listen to the voice of the voice that God speaks to us about any sin in our lives, it can come, one time will come that God has to send someone to us and show us our faults.
और इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर की आवाज को हमारे पाप के प्रति हम नहीं सुनते तो कोई परमेश्वर किसी को भेजेगा ताकि उस पाप को हमें बता सके.
But at least David later recognized his sin and repented.
लेकिन उसके बाद दाऊद ने अपने पाप को माना और पश्चाताप किया.
One thing I read about David is when in Psalms 51
और 51 भजन संहिता के अंदर दाऊद के बारे में मैं एक चीज को पढ़ता हूँ.
It says in one word in that Psalms that Against you and you only have sinned, he says.
और वहाँ पे कहता है कि मैंने तेरे ही विरोध में पाप किया है.
So when he sinned against Bathsheba,
और जब उसने बाथशीबा के साथ में पाप किया,
he didn't think that he sinned against her first. He said, I have sinned against you, Lord.
और उसने ये नहीं सोचा कि मैंने पहले बाथशीबा के साथ पाप किया, लेकिन वचन चार में कहता है कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है.
When I sinned against some other person, anywhere, anyone. I first sin against God.
और मैं कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के विरोध में अगर पाप करता हूँ तो पहले वो पाप परमेश्वर के साथ विरोध में होता है.
And then he says in later that don't take away the Holy Spirit from me.
और उसके बाद वो कहता है कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा तू मुझसे ना ले.
When I sin, first thing God wants is to restore the fellowship with God.
और जब मैं पाप करता हूँ पहली चीज जो परमेश्वर मेरे जीवन में चाहते हैं उस संगति को पुनर्स्थापित करना.
Because that is the first thing that is lost.
और क्योंकि पहली चीज वही है जो खो जाती है.
And when I don't have the fellowship with God, the life becomes terrible. We can go and sin, we can do anything.
और जब हम संगति को खो देते हैं परमेश्वर के, हमारा जीवन बहुत ही भयानक हो जाता है, हम कुछ भी गलत चीजें करने लग जाते हैं.
So first thing that God wants in our lives is to listen to the voice of the Holy Spirit and to set right anything that God tells us.
और पहली चीज जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और जो भी गलत चीजें वो हमें सुधारने के लिए कहता है उसको हम सुधारे.
There's one verse in Song of Songs.
और श्रेष्ठ गीत के अंदर.
It's about this Song of Songs is about the bride and bridegroom relationship.
और यहाँ पे दूल्हे और दुल्हन के संबंध के उनके रिश्ते के बारे में ये गीत है.
In second chapter.
दूसरे अध्याय में.
8th verse.
वचन 8.
Listen, my beloved, he is coming. Behold, he is coming.
मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है.
सो इट सेज दैट ब्राइड कुड लिसन टू द वॉइस ऑफ द ब्राइडग्रूम.
और यहाँ पे जो दुल्हन है वो दुल्हे की आवाज को सुन पाती है.
सी आई कैन लिसन सो सो एक्साइटेड.
और वो सुनकर बहुत ही आनंदित और उत्तेजित होती है.
सो दिस इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट गॉड वांट्स मी टू हैव. ऑलवेज आई हैव दैट लिसनिंग हियर. आई कैन लिसन सो क्लियरली टू दैट वॉइस दैट स्पीक्स टू मी.
और इसी प्रकार का संबंध परमेश्वर हमारे और परमेश्वर के बीच में चाहता है कि इतने हम उसके पास रहे कि हम उसकी आवाज को सुन सके बहुत ही साफ रीति से.
लिसनिंग टू गॉड इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट वी शुड इफ यू लूज इट वी हैव टू रियली क्राई आउट लॉर्ड वी वांट इट बैक.
और ये परमेश्वर की बातों को सुनना ये बहुत ही मूल्यवान है, ये तोहफा है. अगर हम इसको खो देते हैं परमेश्वर को पुकारना है इसको पाने के लिए.
एंड वी कैन लूज इट इफ यू कॉन्स्टेंटली रिबेल अगेंस्ट द वॉइस एंड इग्नोर इट.
और परमेश्वर की आवाज के सामने अगर हम निरंतर बलवा करते रहेंगे उसको नजरअंदाज करेंगे तो हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे.
When we are children,
और जब हमारे बच्चे होते हैं
we teach them to say sorry and whenever they do something wrong to
और us. हम उनको सिखाते हैं कि जब कोई गलत काम करते तब वो सॉरी बोले.
first when they are small, when they say sorry, they're just saying it to maybe to just please the parents.
और पहले जब वो छोटे होते वो इसलिए sorry बोलते क्योंकि वो माता पिता को खुश करना चाहते हैं.
But later we hope that when they grow up they understand what it does, why they are saying sorry.
और जब वो बड़े होते हम ये आशा रखते हैं उस बात को समझेंगे कि क्यों वो उस व्यक्ति को sorry बोल रहे हैं.
That they will get a conscience which tells them that they are hurting God when they are hurting someone else.
और उसके बाद उनको परमेश्वर विवेक देगा कि जब किसी और को वो चोट पहुंचाते वो परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं.
And then later, when they are doing in the as children, they are not able to listen to the voice of God. But once after some years, when God speaks to them, they can listen to the voice of God. Then later.
जब वो छोटे होते तब वो शायद परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते लेकिन जैसे वो बढ़ते हैं शायद वो परमेश्वर की आवाज को उस बारे में सुन पाते.
God, once you have a desire, God can work in that area and make it more and more sensitive.
और अगर हमारे अंदर कोई किसी क्षेत्र के अंदर हमारे जीवन में कोई इच्छा है तो परमेश्वर उस क्षेत्र को और संवेदनशील बना सकता है.
We know about Judas also.
हम यहूदा के बारे में जानते हैं.
Judas Iscariot.
यहूदा इस्कारियोत.
When in John 12.
और यूहन्ना 12 अध्याय.
12:6.
वचन 6.
He used to pilfer from the offering box.
और वो जो
money box.
जो पैसों का जो चंदा था उसमें से वो पैसे लेता था.
He was a thief.
वो चोर था.
So this was not like he started when Jesus chose him, he was not like that.
और जब परमेश्वर ने उसको चुना था तब वो ऐसा नहीं था.
But he used to secretly do this.
लेकिन वो गुप्त रीति रहस्यमय रीति से इस चीज को करता था.
And he killed his conscience because of doing it again and again.
और बार बार ये पाप करने की वजह से उसने अपने विवेक को पूरी तरह से मार दिया था.
And then what happened is when he was the one who betrayed Jesus.
और वही वो व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया और पकड़वाया.
And then he betrayed and he couldn't even listen to God.
और वो यीशु मसीह को उसने पकड़वाया और यहाँ तक कि वो परमेश्वर की आवाज को तक नहीं सुन पाया.
Later he killed himself and he told the priest that he doesn't want this money that was given.
और उसके बाद वो याजक के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं उसके पास पैसे, उसको ये पैसे नहीं चाहिए तो अपने आप का उसने घात किया.
He didn't know that he could go to Jesus and like Peter, he repented.
और उसको ये पता नहीं था कि पतरस के जैसा वो वापस यीशु मसीह के पास जाकर पश्चाताप कर सकता था.
Peter also same way he also betrayed denied Jesus.
और उसी प्रकार पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था.
But his attitude was so different from Judas.
लेकिन पतरस का जो स्वभाव था, जो प्रतिउत्तर था, यहूदा से बहुत ही अलग था.
As soon as he came to know that he has denied, he was so repentant.
और उसको जिस क्षण उसको पता चला कि उसने यीशु मसीह को इनकार किया है उसी समय उसने पश्चाताप किया.
So you know what direction each person, where Judas went and where Peter went.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस किस दिशा में जाता है और यहूदा किस दिशा में गया.
He was one of the greatest apostles in Acts. If you read so many things he God did through him.
और पत्र यही प्रेरितों के काम के अंदर हम पढ़ते हैं कि कितने अद्भुत काम परमेश्वर ने पत्रस के द्वारा किए.
What a important thing it is to listen to the voice of the conscience.
और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की आवाज को हमारे विवेक के द्वारा सुनना.
And to keep our conscience clear.
और हमारे विवेक को शुद्ध बनाए रखना.
Even we and one more thing is that when in the old testament
aur purane niyam mein
when they confess their sin, like David confesses sin,
aur jab Daud ne apne paapon ko mana,
that time they didn't get a total clearance of their conscience.
और तब उनके विवेक में पूरी तरह से वो पूरे साफ नहीं होता था.
It says in Psalm 32 that in the first verse,
और 32 भजन संहिता के पहले वचन में लिखा है,
Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है.
So in the Old Testament there was no cleansing.
और पुराने नियम के अंदर पापों से पूरी तरह से शुद्धता या धोना नहीं था.
Like you have in the New Testament, the cleansing that we have in the New Testament is much ahead.
लेकिन नए नियम के अंदर उससे बहुत आगे बढ़कर है.
There was always, if you read in Hebrews, it's very clearly mentioned there.
और इब्रानियों के अंदर बहुत ही साफ रीति से इसको लिखा गया है.
Like in Hebrews,
इब्रानियों
10,
उसका 10 अध्याय.
From the first verse. It's Yeah, here you read about in the second and third verse.
दूसरा और तीसरा वचन.
No, from the first itself, it says that year after year they had to make the same sacrifices, the priest.
और यहाँ पे लिखा है कि याजकों को प्रति वर्ष एक ही प्रकार के बलिदानों को चढ़ाना था.
And then it says in the third verse that in those sacrifices there is a reminder of sins year after year by year.
परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है.
So this is a big difference that happens to us. Like when David acknowledges sin, he couldn't get a, he used to remember, yeah, but I did that. He had that. It was not fully clearing of that is sin.
और यही भिन्नता हमारे और पुराने नियम के अंदर जाने मिलता है कि जब दाऊद ने पाप किया वो पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं, लेकिन वो उसे स्मरण आता है बार बार कि मैंने ये पाप किया है.
Because it says in the fourth verse that it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin.
क्योंकि चार वचन कहता है क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे.
There's the people in the Old Testament, they didn't have their sins taken away.
और पुराने नियम के लोग हैं उनके अंदर ये नहीं था कि वो पापों को पूरी तरह से निकाल दिया जाए.
It says in 1 John 3:5 that he came in order to take away, he appeared in order to take away sins.
और पहला योहन्ना 3:5 में लिखा है कि वो इसलिए आया, प्रकट हुआ कि हमारे सारे पापों को वो पूरी तरह से निकाल दे.
If we read in the Hebrews 10 later part,
इब्रानियों 10 के आगे के भाग में हम पढ़ते हैं
17th verse it says their sins and their lawlessness I will remember no more.
और वहां लिखा है कि मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा.
So the cleansing that we receive in the New Testament is much better. Like we do, there is no remembrance of that sin.
और यहाँ पर जो परमेश्वर ने हमें शुद्धता जो हमें नए नियम में किया है वो पुराने नियम से बहुत ही बेहतर है, वो बिल्कुल स्मरण नहीं करता हमारे पापों को.
We should value the blood of Jesus.
और हमें परमेश्वर के लहू का मूल्य करना है.
We need to know how much what is the value of that.
और हमें यीशु के लहू को मूल्य करना है कि कितना मूल्यवान यीशु का लहू है.
It says in Hebrews 9
इब्रानियों 9
13 and 14
13 और 14
For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God.
और क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का पवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो.
The blood of Jesus and cleanses so thoroughly.
और पूरी तरह से साफ कर देता है ताकि पाप की कोई भी स्मरण पाप का नहीं रहता
है. So clear.
और हमारा विवेक पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है.
We know about the God repentance without regret.
और यहाँ पर हम पढ़ते कि बिना खेद का जो मन फिराना होता
In,
है.
Second Corinthians, I don't know where exactly it is, but it says that what clearing of the sin it brings, what clearing, like you feel that there is such a clearing in our lives.
और हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार का साफ या शुद्धिकरण आ जाता है.
And then we know that we have received real cleansing there when we can listen to the voice of God so clearly.
और हम ये जान पाते हैं कि हमारा पूरी तरह से शुद्धिकरण हुआ और परमेश्वर की आवाज को साफ तरीके से सुन पाते हैं.
If we read in Revelation,
हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं.
When Jesus is speaking to the each of the churches.
और वहाँ पे यीशु मसीह जब सारे कलीसियाओं के साथ बात करते हैं.
We read that in one church that they in Revelation
prakashit vakya
3:17
3:17
this church was so they couldn't hear the voice of God that they thought that they were rich and become wealthy and need of nothing.
और यहाँ पे लौदिकिया की कलीसिया को लिखते हुए वे कलीसिया के लोग समझते हैं कि वे बेहद धनी हैं, धनवान हो गए हैं.
This is such a bad state that God, Jesus thinks something else only about them.
और यहाँ पर इतना एक बुरा उनका ये स्थिति है कि परमेश्वर कुछ उनके विरोध में कुछ अलग ही कहता है.
You do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked.
तू ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है.
What a terrible state to be in. Like I think I am okay, but God, Jesus says you are so miserable.
और कितना ये भयंकर स्थिति है कि जहाँ हमको लगता है कि हम ठीक है, लेकिन यीशु कहता है कि तू बहुत ही कंगाल परिस्थिति में है.
That is where we know that In Matthew, when Jesus speaks about those who come to him in the final day,
और इसलिए मत्ती में पढ़ते हैं कि जो अंतिम न्याय के दिन में जब यीशु मसीह के पास लोग आकर कहेंगे,
some people will come to him and say, I did this and this so many things.
और लोग आकर कहेंगे कि मैंने बहुत सारी चीजें तेरे नाम से की.
Jesus tells them, I never knew you.
और यीशु उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता.
Depart from me.
और मुझसे तुम अलग दूर हो जाओ.
What was their sin?
और उनका पाप क्या था?
The sin was that they didn't have a good conscience. So that's one of the areas that they didn't work out.
और एक ऐसा भाग उनके जीवन में था कि उनके पास एक अच्छा विवेक नहीं था जिस पर उन्होंने काम नहीं किया.
That means that I can live in with a bad conscience and do many things for God.
और इसका मतलब है कि मैं एक गलत एक बुरा विवेक रख सकता हूँ और उसके बावजूद भी परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ.
But there is no connection with God.
लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं होगा.
There is no fellowship.
परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है.
If I don't have fellowship, whatever I do is zero value.
और अगर परमेश्वर के साथ कोई संबंध मेरा संगति नहीं है तो जो कुछ मैं करता हूँ उसका मूल्य शून्य होगा.
Shows the importance of that.
और ये जो वचन का भाग है उसका महत्व दिखाता है.
We need to remember that one day I have to stand before him.
और मुझे याद रखना है कि एक दिन मुझे उसके सामने खड़ा रहना है.
And give an account of my life.
और मेरे जीवन का लेखा उसको देना है.
So each day when I live, I need to always see whether there is any sin that God is prompting me that I need to clear.
और प्रतिदिन मुझे देखना है कि ऐसा कोई पाप मेरे जीवन में है जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन में से उसे मैं दूर करूं.
It says about Zacchaeus that when he saw Jesus,
और हम जक्कई के बारे में सुनते जब उसने यीशु को देखा,
first thing that he did was to clear whatever was wrong in his life.
और पहली चीज जो उसने किया, जो कुछ भी गलत था उसको उसने सही किया.
First thing he said that I will return whatever I have taken wrongly.
और वो कहता है कि जो भी गलत और धोखे की रीत से मैंने लोगों को उसको चार गुना मैं फेर दूंगा.
And then I will give to the poor. Also he said.
और वो कहता है कि मैं उसे कंगाल और गरीबों को बांट दूंगा.
So he was immediately convicted of his sin.
और तुरंत ही उसको अपने पाप का बोध होता है.
And he didn't try to hide. He just openly said, Lord, I will do this.
और वो छुपाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से सामने कहता है कि प्रभु मैं इसको करूंगा.
The same way in our lives.
उसी प्रकार हमारे जीवन में.
God may tell me to do something that I did many years back.
और परमेश्वर शायद स्मरण दिलाएगा जो गलत मैंने बहुत साल पहले किया.
I stole some silly thing from the office or from some school or something, whatever I must have done something.
और स्कूल से ऑफिस से मैंने कुछ चीजें चोरी की होगी या कुछ गलत मैंने किया होगा.
I don't have to dig myself into thinking what I did, but if the Holy Spirit reminds me.
और मुझे बहुत खोदना नहीं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा मुझे उन बातों को स्मरण दिलाता है.
The conscience is pricking me.
अगर वो विवेक मुझे मेरे हृदय को छेदता है,
I should not kill that. I should not put it to death.
और मुझे उसको पूरी तरह से मारना नहीं है.
When we ignore that voice, it becomes dimmer and dimmer. Then once a day will come and we'll not be able to listen to that voice.
और वो हमको उसको मारना नहीं है, लेकिन वो अगर हम उसको नहीं सुनेंगे तो वो और भी धुंधला पड़ता जाएगा और उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे.
So it's very important that whatever he says, it may be a silly thing, but I need to do it.
ये बहुत ही जरूरी है कि जो कुछ परमेश्वर हमको हमारा विवेक हमको कहता है वो शायद बहुत ही मामूली चीजें होंगी, लेकिन हमको उसको करना है.
When Paul in Acts we read about Paul,
पौलुस के बारे में हम सुनते हैं पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में.
He says that he kept a very clear conscience with God and man constantly.
और वहां पे कहता है कि परमेश्वर और लोगों के प्रति उसका बहुत ही शुद्ध विवेक था.
And then we read about immediately after that in the Acts we read that immediately his conscience was his conscience became again guilty.
और वहां पर उसके बाद तुरंत पूछते कि उसका विवेक जो है वहां पर दोषित महसूस करता है.
He spoke against that priest in a wrong way.
और वो एक याजक के विरोध में एक बुरी तरह से उसने गलत रीति से बात किया.
His attitude is so good. Immediately he said he apologized.
और तुरंत उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि तुरंत उसने उसको मान लिया कि उसने गलती की है.
Also Paul, if you read in Romans.
और रोमियो के अंदर हम देखते हैं
when he says, when the Holy Spirit shows him his real the heart's condition, the seventh chapter if you read.
और सातवें अध्याय में जब परमेश्वर उसको अपने उसके हृदय की एक सही अवस्था दिखाता है.
The lusts that were so much making him sin.
और जो वासनाएं जो उसको बहुत पाप के प्रति प्रेरित करती है.
He didn't hide it and try to be good, but he just cried out, Lord, this is a wretched state of my heart.
और उसने उन सारी बातों को छुपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन पुकारा कि परमेश्वर में अभागा मनुष्य इस पाप से मुझे छुड़ा.
It is okay. It's no one is seeing me. It's in my heart. But he was so honest. He just cried out to God.
और उसने ये नहीं सोचा कि ये ठीक है कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन इतना ईमानदार था उसने परमेश्वर को पुकारा.
And that is the attitude that God wants me to have always. That even if no one is seeing me, there is something in my heart. There is some secret jealousy or something that God is showing me. Immediately I confess it.
और यही स्वभाव परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन में है, कोई भी छिपी हुई जलन या कोई भी पाप मेरे जीवन के अंदर है तुरंत मैं उसको मान लूं.
I don't have to do many big good works for that. Just one thing, ट्रूली एंड विद अ रियल सिंसियर हार्ट जस्ट कन्फेस इट टू गॉड,
और मुझे बहुत सारी भली चीजें करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बहुत ही गंभीर और एक सही हृदय के साथ उनको मुझे मान लेना
है। दैट्स व्हाई इट इज इन 1 जॉन,
इसलिए पहला यूहन्ना,
दैट वी रीड इन द बिगिनिंग,
पहला यूहन्ना
फर्स्ट 1 जॉन 1,
पहला यूहन्ना पहला अध्याय
1 फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स,
6 वचन से आगे।
If we say that we have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth.
यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते।
What is walking in darkness?
और अंधकार में चलना क्या है?
It is not walking with a clear conscience.
और इसका मतलब कि एक सही, एक शुद्ध विवेक के साथ नहीं चलना।
I become a liar when I do that.
और मैं झूठा ठहरता हूँ जब मैं ऐसा करता हूँ।
And then it says, और
सात वचन कहता है, यदि जैसा वह ज्योति में वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं।
And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin.
और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
This is the way God wants us to live every day.
और परमेश्वर इस रीति से मैं प्रतिदिन जीना चाहता है।
First walk in the light.
पहले ज्योति में चलना है।
And then when the when I'm walking with Jesus, when I'm walking in the light, I can see many dark areas.
और जब मैं यीशु मसीह के साथ ज्योति में चलता हूँ, तो बहुत सारे अंधकार के क्षेत्र मेरे जीवन में देख पाता हूँ।
Sometimes maybe not reading the Bible, but sometimes live like suddenly He will bring me to a situation where it'll be totally exposed what is in my heart.
और कई बार बाइबल पढ़ते समय, लेकिन कई बार ऐसे ही मेरे जीवन के अंदर ऐसे क्षेत्र को खोल कर निकालेगा।
Suddenly everything comes out.
और अचानक रीति से सारी चीजें बाहर निकली।
That is not to make me discouraged.
और ये मुझे निरुत्साहित करने के लिए नहीं।
But to cry out, Lord, I don't want this thing in my life.
लेकिन ये पुकारने के लिए कि प्रभु, मैं इस चीज को मेरे जीवन में नहीं चाहता हूँ।
I don't want to go on like this, like not keeping my conscience clear. I want to clear it immediately.
और प्रभु, मैं इस प्रकार आगे नहीं जीना चाहता कि मेरा विवेक शुद्ध ना हो, लेकिन मैं उसको शुद्ध करना चाहता हूँ।
And when God sees my earnestness, one day will come when that some areas God will help me to not fall also.
और जब परमेश्वर मेरे हृदय की ईमानदारी को जब देखता है, तो परमेश्वर मेरी मदद करता है कि कुछ क्षेत्रों के अंदर मैं नहीं गिरूं।
It is not my work, it is the Holy Spirit that does His work in us.
और ये मेरा काम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो मुझ में ये कार्य को करता है।
We need to remember that we should not do anything like the worldly people. They try to do many things to be acceptable to God.
और बहुत सारे हमें ये नहीं करना जिसे दुनिया के लोग बहुत सारी चीजें करते हैं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होने के लिए। मुझे ऐसा नहीं करना है।
It is God who speaks to me.
परमेश्वर जो है मुझसे बातें करता
है। And then I work out what God is speaking to me.
और परमेश्वर जिस रीति में मुझे बात करते हैं, उस क्षेत्र के अंदर मैं कार्य करता
हूँ। So I don't get any credit for it, just because it is just that God spoke to me and I did what He told me.
और इसमें मुझे कुछ श्रेय नहीं मिलता है, क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे बोला, उस क्षेत्र के अंदर मैंने काम किया।
And then one more thing, in Revelation it says,
और प्रकाशित वाक्य में और एक चीज कहता है,
in Revelation, Revelation 14,
प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय।
Here it speaks about a group of people around 1,44,000 people.
और यहाँ पर 144,000 लोगों के बारे में लिखा हुआ है, झुंड के बारे में।
It says in the fourth verse,
चौथे वचन में,
in the middle of that verse it says, these are the ones who follow the Lamb wherever He goes.
और यहाँ लिखा है कि वे ही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं।
This is the way God wants me to do every day.
और इसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि मैं प्रतिदिन जीवन जीऊं।
I have not reached there.
और मैं वहां तक अब तक नहीं पहुंचा हूं।
That is my goal, Lord. I follow you wherever you go. I listen to your voice constantly.
और मैं वो लक्ष्य रखना चाहता हूं कि प्रभु, मैं तेरी आवाज को निरंतर सुनकर जहां तू मुझे ले जाना चाहता है, वहां मैं चलना तेरे पीछे चाहता हूं।
Like in John it says that my sheep hear my voice and they follow me.
और यूहन्ना में जैसे लिखा है कि मेरी भेड़ जो मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है।
And they will never perish.
और वो कभी नाश नहीं होगी।
Why? Because they always listen to the voice of the Holy Spirit.
और ऐसा क्यों है? क्योंकि वे निरंतर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं।
So I cannot just claim the eternal life without walking with Him.
और मैं अनंत काल के जीवन को ऐसे ही मैं प्राप्त नहीं कर सकता उसके साथ न चलते हुए।
It says when we confess our sins.
और ये कहते हैं कि जब हमारे पापों को अंगीकार करते हैं,
don't have to do many things, just confess our sins with a true heart.
और हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक सच्चे दिल से हमारे पापों को केवल मानना है।
He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness.
और ये वो परमेश्वर विश्वास योग्य सच्चा है हमारी सारी अधार्मिकता से, अधर्म पापों से हमें छुड़ाने के लिए।
So the way then that path becomes so clear. I can walk with him and I can listen to him and I can fellowship with him.
और वो रास्ता जो बहुत ही एकदम खुला हो जाता है, मैं उसके साथ संगति कर सकता हूँ, सुन पाता हूँ.
It is not very difficult.
और ये बहुत कठिन नहीं है.
It is just one thing I have to confess. Whenever I fall, I just have to confess.
और जब कभी मैं गिरता हूँ, एक ही चीज मुझे करना है, मुझे केवल उस चीज को अंगीकार करना है, कबूल करना है.
Whenever I hurt someone in some way with my words or with my attitude.
और अगर मेरे मेरे स्वभाव से, मेरे शब्दों से किसी को मैं चोट पहुंचाता हूं,
and God convicts me inside.
और परमेश्वर अगर मेरे हृदय के अंदर वो बोध देता है अंदर,
I don't blame the other person. No, he is wrong, I am not right. But I just humbly apologize and clear that matter.
और मैं किसी और के ऊपर दोष नहीं देता कि वो गलत है या मैं सही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही नम्र हृदय के साथ उस चीज को मानता हूँ.
We are all working out. I am also working out. There are many times when I also don't do that, but that is my goal.
लेकिन हम सब और मैं भी इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ, ये मेरा लक्ष्य है.
That always, Lord, I need to value the fellowship with God more than anything else.
और प्रभु हमेशा मुझे परमेश्वर के साथ की जो संगति सबसे किसी चीज से बढ़कर उसका मूल्य करना है.
Always keeping a clear conscience.
हमेशा नित्य मुझे एक शुद्ध विवेक रखना है.
So that I can speak to him without anything in between.
और इसके साथ में परमेश्वर के साथ में बिना किसी अवरोध बीच में आए मैं बात कर सकता हूँ.
Also Jesus says that when we pray, if your brother has something against you and you pray, God will not listen.
और यीशु मसीह ने और एक बार कहा है कि अगर जब तुम प्रार्थना करते हो, अगर आपके भाई के विरोध में कुछ है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा.
So and when I start praying, I should first say, Lord, I forgive everyone who has hurt me.
और प्रभु पहले जब हम प्रार्थना करते हैं, उससे पहले प्रभु हर एक को मैं क्षमा करता हूँ जिस किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है.
And I desire to ask forgiveness from anyone whom I have hurt.
और जिस किसी को मैंने चोट पहुंचाई उनसे मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ.
God will listen to our prayers.
और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा.
He is able to change us.
परमेश्वर योग्य है हमें बदलने के लिए.
We may have failed many times.
और हम बहुत बार असफल हुए होंगे.
I have also failed many times.
कई बार मैं असफल हुआ हूँ.
But Lord, you have started the good work and we will see the change in our lives.
और परमेश्वर ने जो भला कार्य आरंभ किया है वो पूरा करेगा और वो बदलाव को हम देखेंगे.
Even today also we may have fallen.
और आज भी हो सकता है कि शायद आज हम गिरे हैं.
But the Lord is so merciful. He will tell us, come back again, come back.
और परमेश्वर इतना दयावान है, वो कहता है कि और एक बार वापस तुम लौट आओ.
He is not like my attitude that I just grab hold anything wrong, I just waiting to catch that sin, someone's sin.
और ऐसा नहीं है कि ऐसा स्वभाव कि कोई पाप या करता है गलती उसकी मैं रात में बैठता हूँ कि उसकी गलती को मैं दबोच लूं.
He has a big large heart.
लेकिन उसका ऐसा स्वभाव नहीं, उसका बहुत एक विशाल हृदय है.
He is able to forgive the worst sinner, the worst person here.
और सबसे एक बदतर व्यक्ति भी अगर कोई पापी व्यक्ति है उसको भी वो माफ करने के लिए आज तैयार है.
We see that in the story of the thief on the cross.
और जो चोर, जो डाकू था उस सूली के ऊपर,
the whole life he lived in sin.
और पूरा जीवन उसने पाप के अंदर बिताया.
Just honest confession, Lord, I deserve this thing and I deserve to go to hell. That thing that took him to paradise.
लेकिन उसका एक वहां पर पाप को अंगीकार करना पूरे सच्चे दिल से, ईमानदारी से उसने कहा कि मैं योग्य नहीं. उस व्यक्ति के उस पश्चाताप ने उसको उस स्वर्ग लोक में उसको लेकर गया.
I really don't have that attitude of the thief.
और मेरे पास वो शायद वो स्वभाव नहीं, लेकिन वो जो चोर का जो स्वभाव था वो मेरे जीवन में होना जरूरी है.
Acknowledge my sin and to confess it to God immediately.
और तुरंत ही मेरे पापों को मैं मान लूं, उसको कबूल करूं.
Amen.
We heard that on the final day, when some people stand before God, God will reject them.
और हमने सुना है कि जो अंतिम समय में जब न्याय होगा, कुछ लोगों को परमेश्वर इनकार करेगा.
And one of the reason we heard that it is because they didn't have a good conscience.
और एक कारण यह है कि उनका जो विवेक जो था वो सही नहीं था.
And when Jesus was saying about that, Jesus spoke about a man who built his house on the sand.
और जब प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बात किया था, उसने एक व्यक्ति के बारे में बात किया जिसने रेत के ऊपर अपने घर को बनाया.
And I heard this message from Brother Zach that man. Built his house on the sand. That means he had built his house or based on his emotions and his mind.
और ये मैंने वचन भाई जैक के द्वारा मैंने सुना कि जिस व्यक्ति ने रेत के ऊपर घर बनाया, उसने अपना emotions के द्वारा उसने उस घर को बनाया.
That means he just For example, if I come to church, I feel very excited.
और जैसे कि मैं कलिशा को आता हूँ, मैं बहुत ही उत्साहित होता हूँ.
And when we have a time of singing, I become very joyful.
और जब हम लोग गाना गाते हैं, तो हम बहुत बहुत आनंद महसूस करते हैं.
And when I hear the word, I'm very excited.
और जब वचन सुनता हूँ, बहुत ही उत्साहित हो जाता हूँ.
And that is my Christian life.
और यही मेरा विश्वासी का मसीहा का जीवन है.
And rest of the week, I do not have a real connection with God.
और दूसरा हफ्ते भर में जो है वो connection नहीं है, वो संबंध नहीं है परमेश्वर.
I do not do the will of God.
मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता हूँ.
I'm just a person who just lives on emotions.
और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सिर्फ इमोशंस के ऊपर जीता हूँ.
I have not surrendered my life to Jesus.
और मैंने जो है अपना जो जीवन को है प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण नहीं किया है.
And even if after 10 years, 20 years of coming to church.
और 10 साल 20 साल कलिशा को आने के बावजूद भी.
If I have not surrendered my life to Jesus.
अगर मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण नहीं किया है.
I'm just going through these emotions.
और मैंने सिर्फ अपना ही व्यक्तिगत emotions के द्वारा मैं चल रहा हूँ.
That every day I get sometimes I may cry, sometimes I may do something, but I don't have that my will is not surrendered.
और कभी मैं रोता हूँ, कभी मैं ऐसे ही रहता हूँ, लेकिन मेरा जो इच्छा है, वो स्वयं इच्छा जो है, मैंने समर्पण नहीं किया है.
I do not know Jesus Christ.
और मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ.
Then in that final day I will get a shock.
और जो अंतिम जो न्याय का दिन होगा, उस दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा.
So it is good that we sit down and we get right with God.
और बहुत ही अच्छा है कि हम बैठ करके वो जो संबंध जो है उस चीज को परमेश्वर के साथ ठीक करें.
We take some pains, maybe like Zacchaeus took some pains to examine his life and come right with God.
और कुछ दर्द हमको सहना पड़ेगा, जैसे ज़कियस ने कुछ दर्द सहा कि ताकि हम परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको हम ठीक करें.
एंड that is very important.
और ये बहुत ही जरूरी है.
Because we do not want that we just go through life and at the end God rejects us.
और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरा जीवन जीते हैं और अंतिम जो न्याय का दिन होता है परमेश्वर हमें इनकार करता है.
One of the verses which Jesus spoke in Matthew 5.
और एक वचन जो मत्ती के सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत किया.
He spoke about many things.
उसने बहुत चीजों के बारे में उसने बातें किया.
And he said in Matthew 5 verse 24.
और मत्ती का 5:24 में.
From verse 23.
उसका 23 से लेकर के.
He said, if you are presenting your offering at the altar.
अगर तुम अपना जो वेदी के ऊपर अपना जो भेंट लाते हो.
And there remember that your brother has something against you.
और आपके भाई के बीच में कुछ विरुद्ध बातें हैं.
Leave your offering there before the altar.
और आपका जो भेंट जो है उस वेदी के ऊपर ही रख दो.
First go and be reconciled to your brother.
पहले जाकर आपके भाई के साथ जो संबंध जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करो.
And present then present your offering.
और फिर आकर के तुम वेदी के ऊपर आकर के भेंट चढ़ाओ.
So we know that what is more important.
और हम जानते हैं क्या बहुत जरूरी है.
Rather than coming to the meeting, more important thing is I should have a good conscience.
और एक मीटिंग में आने से ज्यादा जो जरूरी है कि मेरा जो विवेक है वो बहुत ही अच्छा होना जरूरी है.
So if I have hurt someone.
और मैं किसी को मैंने दुख पहुंचाया है.
And if I can just continue like that week on week.
और हफ्ते भर हफ्ता ऐसे ही अगर मैं चलता रहता हूँ.
And I don't feel any prick of the conscience.
और मेरे अंदर कोई ऐसा छुपने वाली बात नहीं है.
And I can even avoid that person.
और हो सकता है कि मैं उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर सकता हूँ.
And there is something seriously wrong with us.
और फिर हमारे अंदर कुछ एक बहुत गंभीर तरीके से कुछ गलत चल रहा है.
And maybe we do not have that connection with God.
और हो सकता है कि मेरा जो रिश्ता संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है.
Jesus said, if you hear these words of mine.
और प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर आप मेरे इस शब्द को इस वचन को अगर आप सुन रहे हो.
And do not do anything.
और आप कुछ नहीं करते हो.
Maybe we get excited.
हो सकता है कि हम बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं.
And we go back.
हम पीछे चला जाते हैं.
No, we go back home.
हम घर चला जाते हैं.
And we forget everything.
और हम सब कुछ भूल जाते हैं.
Again we hear God's word next Sunday.
और दूसरे हफ्ते आते हैं और फिर हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं.
But if we don't do anything.
और उसके ऊपर अगर हम कुछ नहीं करते हैं.
We will be like the man who built his house on the sand.
हम उस व्यक्ति के समान होंगे जिसने रेत के ऊपर अपना घर को बांधा.
Sir, that is why when God speaks something, it is good to take at least the one step which God tells us.
और जब परमेश्वर जब हमसे कुछ बातें करता है तो अच्छा होगा कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं.
That one thing which God has spoken to me, I will do it.
कि एक बात जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है उस कार्य को मैं करूंगा.
In Ephesians
इफिशियों का पुस्तक
चैप्टर 4
उसका चौथा अध्याय
एंड वर्स 26
उसका 26 चार का 26
इट सेज बी एंग्री एंड येट डू नॉट सिन
और बोलता है कि क्रोधित हो जाओ लेकिन लेकिन पाप मत करो
डू नॉट लेट सन गो डाउन ऑन योर एंगर
और आपके पाप के द्वारा जो है सूरज को डूबने मत देना
एंड डू नॉट गिव द डेविल एन अपॉर्चुनिटी
और शैतान को कोई मौका मत देना
सो इफ आई एंगर इन माई हार्ट
अगर मेरे अंदर क्रोध है गुस्सा है
And I should not allow that anger to remain till sunset.
और वो जो क्रोध और वो जो गुस्सा को जो है सूर्य अस्त तक हमें उसे बना हमारे अंदर बना नहीं रहना है
I should before I go it is best to immediately confess it.
और हो सकता है कि हम तुरंत उसके ऊपर अंगीकार करें
एंड गेट इट राइट इफ आई स्पोकन समथिंग बैड
और उसको ठीक करें अगर हमने कुछ गलत कहा है तो
इफ आई कुड नॉट डू दैट
अगर मैं नहीं करता हूँ
एटलीस्ट टिल आई गो टू बेड बिफोर आई गो टू बेड आई नीड टू क्लियर दैट
सोने से पहले उससे पहले उस चीज को हम ठीक करें
दैट इज व्हाई इट सेज इन नेक्स्ट वर्स डू नॉट गिव प्लेस टू द डेविल
और इसलिए उसके बाद वाला वचन में ऐसा लिखा गया है कि शैतान को कोई जगह मत देना
इन मैथ्यू चैप्टर 5
मत्तियो के सुसमाचार 5
When Jesus spoke about setting things right,
और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो चीजों को ठीक करने के बारे में,
in verse 22,
उसका 22 में,
it says, everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court, and whoever shall say to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the supreme court, and whoever says, you fool, shall be guilty enough to go to fiery hell. So it says here that if I speak angrily with my brother and I keep on saying some things angrily, I can go to hell.
और यहाँ पे ऐसा कहता है कि अगर मैं मेरे भाई के विरुद्ध कुछ भी जो गुस्से से मैं कहता हूँ और उस चीज को मैं लगातार करते जाता हूँ तो मैं नरक में जाऊँगा.
So that is why I'm not saying that we need to fear hell all the time.
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा उस नरक के बारे में हम डरते रहे.
But there is a deception which is there, which we need to be careful of.
और हम लोग बहुत ही चौकस रहना है और उसके बारे में हम लोग को बहुत ही चौकसी से रहना है.
In James it says, if you hear the words of mine and don't practice it, you are deceiving yourself.
और याकूब में ऐसा लिखा गया अगर तुम वचन को सुनते हो और उसको इस्तेमाल नहीं करते हो तो फिर अपने आप को तुम दोष लगाते हो.
So we should not deceive ourselves.
हम अपने आप को डिसीव ना करें अपने आप को धोखा ना दे.
May God help.
परमेश्वर हमारी सहायता करे.
Once again, I thank God for this, for His word.
मैं और एक बार धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का वचन के लिए.
Especially I'm thanking God that He always giving a lights on me upon the topic like consciousness.
और हमेशा जो ज्योति परमेश्वर देता है खास करके इस विषय के ऊपर जो विवेक के बारे में.
In Genesis chapter 1 verse 18 we read that God had separated darkness from the light.
और उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ज्योति से अंधकार को अलग किया है.
And he said that it is good.
और फिर उसने कहा कि ये उसको अच्छा लगा भला है.
And we read in the Bible that every time the darkness is the sign of a sin.
और हम पढ़ते हैं काफी जगह में वचन में कि जो अंधकार जो है वो पाप का एक 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 दशा है.
एंड एवरी टाइम इट रिफ्लेक्ट इन आवर लाइफ दैट वेदर वी आर लिविंग इन डार्कनेस और इन लाइट इट इज आवर ओन चॉइस.
और ये एक बात है कि हमारे जीवन में कि क्या हम ज्योति में जी रहे हैं या अंधकार में जी रहे हैं ये हमारा खुद का एक चुनाव है.
दैट इट मीन्स दैट इट इज टोटली आवर डिसीजन दैट वेदर वी वॉन्ट टू लिव इन अ लाइट ऑफ अ कॉन्शियस और वी वॉन्ट टू लिव इन अ डार्कनेस.
ये अपना एक निर्णय करने की बात है क्या हम ज्योति में जीना चाहते हैं या अंधकार में जीना चाहते हैं.
So it's very much serious to do not be blunt in our consciousness.
और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे विवेक में हम अंधा हो जाएं.
Today we meditate upon only this topic that we are only the responsible.
और हमने आज यही ध्यान किया है कि हम ही इसकी जिम्मेदार हैं.
As we know all the Bible verses regarding the consciousness.
और जैसे हम लोग वचन में काफी वचन को जानते हैं जो विवेक के बारे में लिखा गया है.
But still, if we are committing the same sin in our life,
और अगर हम वही पाप को हम फिर से दोहरा के अगर हम करते हैं,
this question also I am asking on my own self also that are we ignoring the great salvation in our life.
प्रश्न को मैं अपने आप से मैं पूछ रहा पूछता हूँ कि क्या हम लोग जो है उस जो महान जो बड़ा जो जो उद्धार है उसको हम 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 इग्नोर कर रहे हैं क्या?
Many times this happens that after we become born again, after being filled with the Holy Spirit, we forget the simple thing that great salvation of God has given us. बहुत से
बार हमारा जो नया जन्म पूर्ण जन्म होने के बाद उद्धार होने के बाद हम इस चीज को भूल जाते हैं.
Are we taking things casually that God has done this major thing for us in our life?
क्या हम चीजों को ऐसे ही हल्का सा लेते हैं जो चीज परमेश्वर ने बहुत ही गंभीर तरीके से हमारे लिए रखा है?
How many times we thankful to God that His great salvation
और कितने बार हम धन्यवाद देते हैं उसका उस उद्धार के लिए?
That consciousness is more important.
और वो जो विवेक है वो बहुत ही जरूरी है.
It is written that Jesus has came to this world to save us from all sort of sin.
और ऐसा लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर है आया था कि हमारा कैसे भी बड़ी पाप हो उससे हमें बचाने के लिए छुड़ाने के लिए.
Sin is the darkness.
और जो पाप जो अंधकार में.
Sin is a death.
और पाप जो है वो मृत्यु है.
And to save from this death and darkness, Jesus has came.
और उस मृत्यु और उस अंधकार से परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आया.
We need to understand what is mean by the salvation.
और हमको समझना है कि उद्धार का मतलब क्या है.
Are we taking it very much lightly?
क्या हम उसको ऐसे हल्का से लेते हैं?
Are we living in a light?
क्या हम ज्योति में जी रहे हैं या अंधकार में जी रहे हैं?
It is total decision of ours.
और ये हमारा खुद का एक निर्णय है.
We know that God has created this salvation for us.
और परमेश्वर ने ये जो उद्धार जो है हमारे लिए रखा है.
So it is total our responsibility now that we become His child.
और ये हमारी जिम्मेदार बनता है कि हम उसका बच्चे बने.
And this is our motto in our life that we should not be remain as his children but become more than a conqueror.
और हम जो है उसका सिर्फ बच्चे ना बना रहे लेकिन उससे भी अधिक हम चीजों को पाए परमेश्वर के वचन में.
That is why when we are a small child we have been taught lot of things by our parents.
और जब हम बच्चे रहते हैं माता पिता के द्वारा बहुत सी चीजें सिखाया जाता है.
And when we go to the school, and there also we can learn lot of things.
और जब स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी और काफी चीजों को सिखाया जाता
है. Then we go to the college.
उसके बाद कॉलेज जाते हैं.
You see the stages.
और इस चीजों को हम देख सकते हैं कि कैसा है.
Just think about that. How much discipline we are getting at each stage of our life.
और हम देख सकते हैं कि कैसे हम हर एक स्थिति पे कैसे चीजों को हम सीखते जाते हैं.
At our childhood, we got lot of discipline, lot of pampering, and lot of attention from our parents.
और जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता के द्वारा हमें बहुत सा प्यार मिला और बहुत सी चीजें हमें सिखाया गया था.
At the school, we got a very discipline from our school teachers.
और स्कूल में भी हमें कैसा रहना है हमें बहुत सी चीजों को सिखाया गया था.
But when we become older one and we go to the college,
और जैसे हम बड़े होकर के जब हम कॉलेज जाते हैं,
we got a freedom.
और वहाँ पे हमें एक स्वतंत्रता मिलता है.
Do you find any? How many professors got discipline attitude towards their students?
और कितना जो professors को जो है एक disciplined एक स्वभाव अपने students के तरफ रहता है?
We find very much less in college.
बहुत ही कम.
Because at that point, it was been expected that we having our own conscious grown up.
और उस समय जो है हमारा जो स्वयं अपना जो विवेक है वो बड़ा हो जाता है.
Proverbs chapter 22:6 also say in the same way that train up a child in a way that he should not be depart whatever you are teach him at his childhood.
और ऐसा वचन में लिखा है कि आपने बच्चे को ऐसे सिखाया जैसे वो बूढ़ा हो जाए वो उस सत्य से नहीं हटे.
So it was been expected from God also that whatever the basic things we have learned from him when we grown up in the Lord we should have that kind of a sharp conscience in our life.
और परमेश्वर का भी यही इच्छा रहता है जो हम लोग नींव में जब बचपन में जो छोटे में जब हम सीखते हैं वो उससे हम हटे नहीं और उसमें हम बना रहे और बढ़ते रहे.
So my conscience is always need to be walk in a light when I am in grow up child in God.
और मेरा जो विवेक जो है हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मैं ज्योति में चलता रहूं और जैसा मैं बड़ा होते जाऊं वही ज्योति में बना रहा हूं.
It was been told that a righteous is kind of a light which is a growing light which is turned into the noonday light.
और एक धार्मिकता जो है वो ऐसा एक ज्योति है जो दिन का जो जो प्रकाशित जो लाइट है उसके समान है.
So are we ready for that light in our life?
क्या हम तैयार हैं ऐसे एक प्रकाशित जीवन के लिए?
Bible also said that whoever conceals his mistakes will not getting any kind of a compassion from God, but who express and confess those mistakes, he has received mercy from God.
और जो अपना पाप को छिपाता है उसको कोई दया नहीं मिलता है. जो अपने आप को अंगीकार करता है, पापों को अंगीकार करता है, परमेश्वर का दया उसको मिलता है, अनुग्रह मिलता है.
One incident I want to tell you.
एक घटना मैं बताना चाहता हूँ.
One day I received one complaint from my child's school.
और मेरा जो बेटा है उसका जो स्कूल से कंप्लेंट मुझे मिला.
That he is a very notorious, he is not cooperating.
कि वो बहुत ही नटखट है और वो कॉपरेट नहीं करता है.
And then me and my wife has just kneeled down and we prayed that yes God, this is the only thing we it is happened only because of us.
और फिर हम लोगों ने घुटने पे आके प्रार्थना की और परमेश्वर का हमारे द्वारा ऐसा हुआ है.
माय वाइफ वाज सो मच शेकिंग दैट शी वाज फ्राइटेंड दैट व्हाट टू से व्हाट टू डू.
और पत्नी जो थी वो एकदम डर गई थी, क्या कहना है क्या करना है पता नहीं था.
शी वाज ऑलरेडी प्लान दैट एंड अप्लाइड फॉर अदर स्कूल्स आल्सो.
और डर के मारे कि दूसरे स्कूल में भी कोशिश कर रहे कि दूसरे स्कूल में डाले दाखिला ले.
Then afterwards, I just told her that have faith and let's we go and let's we speak with teacher.
और भाई ने ऐसा कहा कि हम लोग प्रार्थना करते हैं और आगे जाके टीचर से बात करते हैं.
And I just told her that whatever it may be, let's accept whatever is happening is happening.
और जो भी हो रहा है जो उस वो हो रहा है उसे हम मान लें.
And then we go, we meet teacher.
और हम जाकर के टीचर को मिल ले.
और एंड वी हैव टोटली बिफोर स्पीकिंग टू हर वी जस्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न टू मीट टू टीचर.
और हम लोग सिर्फ अपना जो टर्न के लिए रुके हुए थे उसको मिलने के लिए.
एंड माय सन व्हेन वी लुक अराउंड आवर सन वाज एग्जैक्टली एक्सट्रीम मैन. ही वाज हाइडिंग बिकॉज ही नो दैट ही वाज मिस्टेकन.
और जो बेटा जो था वो एकदम एक कोने पे जाके छिप गया था.
एंड माय वाइफ वाज वेरी हेजिटेटिंग आल्सो टू स्पीक विद टीचर.
और भाई का जो पत्नी जो थी वो बहुत ही डरी हुई थी टीचर से बात करने के लिए.
सो आई वाज अलोन.
और भाई अकेले थे.
सो आई हैव जस्ट वेंट एंड आई जस्ट टोल्ड दैट यस इट इज ऑल दिस डन बाय अस एंड आई एम द वन हु रिस्पांसिबल फॉर दिस.
और भाई ने ऐसा कहा कि मैं इसका जिम्मेदार हूं और मैं इसका अपने आप को जिम्मेदारी ठहराता हूं.
सो द सीन वाज टोटली चेंज्ड. टीचर वाज अबाउट टू शिफ्ट हिम फॉर अनदर क्लास बट शी एडमिटेड दैट यस यू शोन योर सिंसियरिटी. बिकॉज ऑफ योर सिंसियरिटी वी आर गिविंग योर सन अ चांस एंड it will be good that you are also going to pursue for the right sincerity in it.
Aur is sachai baat ko dekh kar ke teacher soch rahi thi ki wo bacche ko dusre class mein shift karne ke liye, lekin bhai ke baat ko sun kar ke bola ki main aapke us baat ke upar aur aapke jo sincerity hai उसके आधार पे मैं उसको और एक चांस देती हूँ.
That teacher was not a believer or not a believer in Christ.
और वो जो टीचर जो थी वो कोई वो बिलीवर नहीं थी.
But I just apply the one words that once if you are accepting your guilt, you will receive the favor from God.
और जब हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर वो फेवर जो है हमें मिलता है.
And that is only we faithfully we if we follow God, whether the teacher or any your superiors is a faithful one or not, they will follow only whatever the God's command them.
अगर हम परमेश्वर के वचन को पालते हैं, उसके अनुसार जीते हैं और उस विश्वास में बढ़ते हैं, अगर वो आगे वाला जो विश्वास में नहीं है, हमें वो परमेश्वर के ओर से वो आदर हमें मिलता है.
God is a sovereign God. He controls everything.
और परमेश्वर जो है पराक्रम में परमेश्वर है, हर एक चीज के ऊपर वो काबू रखता है.
We came back home and we praise God for that.
और घर आकर के हमने परमेश्वर के स्तुति दिया.
Because nowadays I am just discussing with my friends also that nowadays we are not finding any holdings or anything, that honesty is a policy.
और आज के तारीख में ऐसा ही मित्रों से भाई डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कुछ ये हम देखते नहीं है कि जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब जो ईमानदारी एक अच्छा एक पॉलिसी है, उस चीज को कोई मानता नहीं है अभी.
Nowadays media also not publishing such kind of advertisement that honest is a policy.
ऐसा advertisement अभी publish भी नहीं हो रहा ज्यादा करके.
But conscience says yes, God loves sincerity within heart.
और जो विवेक जो है वो कहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर वो सच्चाई को देखता है, उस धार्मिकता को देखता है.
Out of this door there are lot of challenges.
और इसके द्वारा बहुत ही चुनौतियां हैं.
But every time if we are keeping this thing, one thing that God loves the sincerity within our heart.
अगर हम इस चीज को मानते हैं कि परमेश्वर है उस धार्मिकता को उससे प्रेम या आनंद होता है.
Then I think it will be very much easy to help us to sharpen our conscience.
और बहुत ही अच्छा होगा कि हमारे जो विवेक को और उसको शार्प करने में उसको धार लगाने में.
सो आई प्रेज गॉड दैट ही हेल्प मी टू अप्लाई दिस कॉन्शियसनेस.
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उस विवेक को ठीक करने में परमेश्वर मुझे सहायता की.
एंड आई प्रे दैट इट हेल्प यू आल्सो एंड एनकरेज यू.
और मैं उत्साहित करता हूँ आपकी आपको भी वही सहायता मिले, आपको भी उत्साहित मिले.
थैंक्स टू गॉड.
परमेश्वर को धन्यवाद.